दुख और असाध के बाद का ये सावन महीना है। असाध महीना आते ही कितनी ज्योतियां हैं वो सोचने लगती हैं कि कब श्रावण महीना आए तो हम अपने पिता के घर में जाएंगी और वहां स्वच्छंद रूप में झूले में झूलेंगी और कृष्ण से स्वच्छंद रूप में लिएंगे। इसलिए एक दो महीना पहले से ही सावन महीने की प्रतीक्षा होने लगती है। विशेष करके ब्रज में जावक में जितनी सखियां हैं सब एकत्रित होती हैं और सभी सोचते हैं ये अब पिताजी हमें बुलाएंगे, मैया बुलाएंगे। श्रीमती राधिका जी भी एक महीने पहले से ही ब्रज की तरफ में देखती हैं। हमें कोई आज तक कभी बुलाने के लिए नहीं आया, प्रतीक्षा कर दिन पर दिन बीतते जाते हैं, उत्कंठा उनकी बढ़ती जाती है। जब सावन महीना आने लग गया दो दिन बढ़ तो उत्कंठा अत्यधिक उत्कंठा बढ़ गई और उत्कंठा बढ़ने से डेढ़ दिन पहले ही केवल देखती है घर के बाहर और भीतर कि भैया मुझे बुलाने के लिए आ रहा थे। भैया तो नहीं दिख पड़ा, उनका कोई गांव का बन ग्यारह दिख पड़ा। बंजारा की दिनाएं सावन महीना आते ही रासमयी ये सब दिखाया जाता है, दिखलाते हैं सबको मिला देते हैं। ऐसी बंजारा की लीलाएं होती हैं। बंजारा किसको कहते हैं? बन जा है? उसमें रा पीछे से लगा दिया गया अर्थात उनका कोई घर द्वार नहीं है, ये मतलब उनका कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, किंतु स्त्री पति बेटा बेटी पूरा परिवार है और उनका घर टेंट है, गाड़ी में बैठ कर आज यहां कल वहां ऐसे घूमते रहते, किंतु वो घूम फिर करके बरसाना में आ जाते। हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले बंजारा को गोवर्धन में देखा, कभी भी है अब तो वो बस गए, कुछ बहुत कुछ व्यवस्था करती गई। ये तो पहले बंजारों का चलता था, देश विदेश में वो घूमते फिरते रहते, तो उनका गांव का पर कुछ कोई बंजारा दिख पड़ा, बस देखते हुए और वो रोने लगी और उसको बुलाया और बातचीत करने लगी। बंजारे तुम कहां से आ रहे हो? तो बरसाना से। तुम बंजारी कल लौटेगा बरसाने? तो जब करेगी तब लोग लौट जाऊंगा, तो तुम कल भी पहुंच जाओ। और वहां लौट करके मेरे पिताजी से मिलना, मेरी मैया से मिलना, मेरे भैया से मिलना, उन्होंने उन्हें कहना कि आप अपनी बेटी को भूल गए, मैं महीने से प्रतीक्षा कर रही हूं, यह सावन का महीना आएगा। करते करते बड़ी संख्या से करते करते सावन महीना आया और अभी तक हमको बुलाया नहीं गया, मालूम होता है हमको सभी लोग भूल गए और ये कह करके रोने लगते हैं। बंजारा भी उनकी यह दशा देख करके वो भी रोने लगता है। परस्पर जो बातें हुई या जो कितनी कितनी बातें पीछे रही, पिताजी कभी हमसे याद नहीं करते। मैया भी भूल गई, एक भैया था ये भी भूल गए, मेरी एक छोटी बहन है भी मुझको याद नहीं करती। बंजारा बोला कि मैं अभी लौट करके जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी को मैं कह दूंगा। वहां जाकर के राधिका जी की स्थिति वो वर्णन करता है। ऐसे ही समझना, जितनी सखियां हैं, विशाखा जी की शादी भी वहीं पर है, अनंत मंजरी की शादी भी वहीं पर है, ऊंचा गांव की ललिता जी हैं, उनकी भी शादी पास में ही है, गोवर्धन नामक एक वाले से उनकी शादी हुई थी, चंद्रावली की थी, गोवर्धन बड़ा भारी मल्ल था और कंस का वो प्रधान मल्ल था। तो इसी तरह से जितनी भी बेटियां थी राधा जी की, विशेष करके सहेलियां आकर विभिन्न जगहों से इनकी यही जावत में या आसपास में ही शादियां हुई, अनंग मंजरी, रति मंजरी और सब रूप मंजरी, ये सब उधर ही आसपास में शादी। बृंदा जी की शादी इस वृंदावन में हुई थी, ये वृंदावन की निवासी है और वृंदावन की अधिकारी देवी है, यही वृंदावन को सुरक्षित करके और बड़ी सुंदर बनाती है। पशु पक्षी की पतंगे जितने सब इनके अधीन रहते हैं, जैसे जिसको अधिकार देती है इसको जैसा कहती है परिचालित करती है, ऐसा ही वो सब लोग कृष्ण के लीला के उपयोगी सब वृंदावन को सजा रखा है। उन्होंने इस राज्य को श्रीमती राधिका जी को दे करके और उसे वृंदावनेश्वरी उनको ये उपाधि दिया है। सब सहेलियां मिलती है वहां। पहले तो कृष्ण की लीला हुई गोकुल की, गोकुल के बाद में 37 वर्ष के बाद में कृष्ण छठी पर आ गए और 37 वर्ष के होंगे तो राधा जी कितनी वर्ष की होंगी, 15 दिन छोटी। और भी सहेलियां जैसे ललिता जी हैं 27 दिन बड़ी, विशाखा जी उनके बराबर की उम्र वाली, इसी तरह से सब सखियां उस समय में छोटी छोटी रहती, उस समय में कोई भी संपर्क नहीं। वृंदावन में आने के बाद में ये कुछ बड़ी चलनी फिरने वाली ये सब हो गई, कृष्ण जी दक्षिणों को चराने लग गए, तब परस्पर में मिलन हुआ। इसके बाद में घूमते घूमते राधा कुंड इत्यादि से होकर के दीक में गए, वहां से फिर कुछ दिनों के बाद में चले गए काम्यवन में। काम्यवन में कृष्ण की मैया की का पिताजी का घर है। इसके बाद में वहां से और कुछ बड़े हो जाते हैं तो फिर खेलन वन में जाते हैं। खेलन वन तक में राधा जी पौगंड अवस्था को पार कर लेती है, कृष्ण भी पौगंड अवस्था को पार कर लेते हैं, इसलिए उसका नाम खेलन वन पड़ा। खेलन वन नाम क्या, राधा और कृष्ण के खेलने का वो वन है। इसके बाद में कृष्ण आ जाते हैं नंदगांव में और श्रीमती जी बरसाने में आ जाते, उस समय में ये लोग किशोर किशोरी हो जाते हैं। उसी के बाद में यहाँ पर वहीं से आकर के यहाँ पर भी रासलीलाएं होती हैं और यहाँ कहा वृंदावन में भंडी वन में ये सब। तो ये महीना खास करके झूलन का है। झूलन में क्या, झूलना
कृष्ण की बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जिसमें रास को बतलाया गया है, उसमें सभी लीलाएं हैं। कितनी प्रकार की लीलाएं हैं वो सभी रास में सम्मिलित है। रास एक दो दिन की लीला नहीं, बल्कि ये लीला कितनी दिन की, ब्रह्मा के एक पूरी रात की लीला है जिसमें हजारों लाखों रातें उसमें समा सकती हैं। इस यहां की हजारों लाखों इसमें करोड़ों रातें इसमें आ जाएगी। इसी से देख लो 432,000 का कलयुग, इसका डबल द्वापर तिगुना त्रेता चतुर्गुण और ये सबको मिलाकर के जितना होगा वो संधि का स्थान, सब मिलाकर के 4,32,00,000 वर्ष का एक दिन और इतने का ही हो गया रात। ये दोनों को मिलाकर के 365 से गुणा कर दो और इससे 100 से गुणा कर दो, ब्रह्मा की आयु है
1,400 दिन,
ब्रह्मा जी की आयु
नहीं,
एक दिन में इतना हुआ, उतने दिन की रात हुई और इतना दिन तक ऐसा हुआ कि पल भर लगते हुए गोपियों ने देखा यह रात काल में कहां चली गई। किंतु उसमें सब प्रकार की लीलाएं होने पर भी श्रावण का महीना विशेष महत्व रखता है। विशेष ये महत्व रखता है, कृष्ण जी जरा राधा जी कुछ बाम्य भाव की मधु स्नेह से युक्त है। बाम्य भाव माने मदीय भाव, कृष्ण मेरे हैं, भक्ति का विचार रस का विचार कृष्ण के तरफ से नहीं होता, भक्तों के तरफ से होता है। भक्ति का विचार कृष्ण रसमय है ये कौन कहता है, कृष्ण कहते हैं न कि भक्त लोग कहते हैं, उनके परिकर कहते हैं। इसलिए जहां भी भक्ति का विचार है, उत्तमा भक्ति का विचार है, साधन भक्ति का विचार है और उसके बाद में प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि का है, ये कृष्ण का वर्णन नहीं है। किसका वर्णन है, गोप गोपी ब्रजवासियों का। ये बात कृष्ण भी है कृष्ण नहीं है ये बात नहीं, किंतु विचार होता है भक्तों का। प्रेम कृष्ण में है किंतु का कृष्ण का प्रेम ऐसा है एक कांच के समान है, उसके पास में कोई भी फूल रख दो उसी कारण में ले लेता है, सफेद हो हरा हो नीला हो लाल हो काला हो वो उसका ले लेगा। जैसे ब्रजवासी लोग हैं माता पिता के भाव वाले, सखा के भाव वाले, पुत्र के भाव वाले, गोपियों के भाव वाले, गोपियां भी कितने प्रकार की हैं, एक दो प्रकार की नहीं, मुख्य रूप से 3-7 प्रकार की गोपियां हैं और उनके एक एक के सब जूत है, जूतों में फिर गण है, गण में भी और कितने विभाग हैं, अनंत कोटि कोटि गोपी हैं एक दो प्रकार के और वो सब एक एक भाव है और वो सब भाव आत्म में मिलते हैं और इस आत्म में जो मिलता है उससे भी कुछ अधिक श्रीमती राधिका। इसलिए इनका विचार होता है भक्ति राज्य में जो प्रेम कैसा है, कृष्ण का विचार नहीं होता, कृष्ण का इनके अनुरूप हो जाएगा, जैसा वो उनका रहेगा भक्तों का ऐसा ही होगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव यामि। इसलिए रास में समस्त लीलाएं होती हैं, उसमें दोला भी है, बंसी चोरी है, जितनी मिलन का है और विरह का भी कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो विरह का हो जाता है, तो ये सभी उसमें है। किंतु श्रावण महीने का एक अपना वैशिष्ट, वो वैशिष्ट क्या, कृष्ण गोपियों के साथ में, कृष्ण राधा जी के साथ में जो मिलना चाहते हैं, राधा जी में मदीय भाव होने के कारण और मधु स्नेह होने के कारण उनका प्रेम कुछ बाम्य भाव होता है। जहां ऊपर में हम लोगों ने आज सेवा कुंज में हम लोगों ने वो किया, श्री विग्रह को प्रकाश किया, राधा जी कभी भी कृष्ण के सामने मिलने के लिए उत्सुक है, बहुत उत्कंठित है, किंतु कृष्ण को जहां देख लिया ये कृष्ण मेरे लिए प्रतीक्षा बस वहीं से लौट जाएंगे, मांग कुछ कर लेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। प्रेम का स्वाभाविक यही वक्र भाव है, विशेष करके मधु स्नेह में, मदीय भाव में ऐसा हो। कृष्ण जाएंगे कहां, वो तो मेरे हैं, 10 बार मनाएंगे, इसलिए सब समय जहां भी देखा जाता है हमारे गोसाई ग्रंथों में, या निकट आई और बस लौट जाती है, मिलती नहीं। श्रावण का महीना ऐसा है जो नहीं चाहने पर भी, मैं चाहते हैं अंदर से बाहर से नहीं चाहते, यही माधुर्य है। किंतु श्रावण का एक महीना ऐसा है जिसमें कृष्ण एक वर्ष तक जो प्रतीक्षा करते हैं, जो बात नहीं होती, ऐसे स्वच्छंद तरीके से और बड़े प्रेम से वो मिल जाती है। कैसे मिलती है, श्रावण का महीना आया, झूला लग गया, तब विश्वान महाराज ने अपनी प्यारी बेटी को बुलाया। कैसे बुलाया, श्री राम जी बुलाने के लिए गए। श्री राम जी राधा जी से बड़े हैं, काफी बड़े हैं, कृष्ण से भी ये बड़े हैं, करीब करीब उनके उनसे 2-4-10 दिन बड़े हैं या और कुछ बड़े हैं, बलदेव प्रभु जी के करीब करीब, और कृष्ण के बड़े प्यारे हैं, उनसे छोटी हैं श्रीमती राधिका, और उनसे भी वर्ष एक अनंत मंजरी जी छोटी है। सुबह उन्होंने सिद्धांत को भेजा, जाओ अपनी बहन को ले आओ। सिद्धांत जी मिठाइयों का वो पहले हंडे टंडे चलते थे, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन है ना, उनमें खाजा और क्या क्या, फेनी और क्या, घेवर, और सुंदर सुंदर मिठाइयां बनती और उसमें रख करके बांकी पर कंधे पर लेकर के आदमी उनके साथ में चलते थे। उसमें बेटी के लिए कपड़े और सब गहने इत्यादि सब भेजे जाते हैं, सब मिठाइयों के साथ में, गर्म अलंकारों के साथ में। सुमन जी जा रहे हैं किंतु सोच रहे हैं ज्यादा विलंब हो गया है हम लोगों को वहां जाने में, लाने में जाने कितनी उलहना देगी रोएगी, वो प्रतीक्षा कर रही हैं। जब ये गए तो भैया का पैर पकड़ करके रोने लगी, भैया भैया, और रोते रोते बोली, गला पकड़ लिया ऐसे, भैया तुम लोग हमको भूल गए, पिताजी भी हमको विसार गए, मैया भी हमें विसार गए, कोई भी मुझे याद नहीं कर, मैं कितनी दिन से प्रतीक्षा करती हूं। सुबह भी रोने लगे, सुदाम भी रोने लगे, ये भी रोने लगी, फिर उनको शांत कराया, बोले अभी तुम तैयार हो जाओ, अभी तुमको हम लेने के लिए आए हैं, उनको लेकर दीजिए। फिर उनको बैलगाड़ी गई थी, बैलगाड़ी मैंने गाड़ा नहीं, उसमें दो बैल बड़े सुंदर सुंदर मखमल उनको लगाए जाते हैं, सोने की सिंह लगा दी जाती है, पैरों में फूल, गले में चांदी की झालर, और उनके घंटा तो ये हल्दी छाप दे करके उसमें दे देते हैं। बड़े सुंदर सुकान विश्वान महाराज के घोड़े, घोड़ों से भी अच्छी, और उनमें गाड़ी तो दो एक आदमी बैठ सकता है, बड़े गलीचे और क्या क्या सब दे करके वो रहते हैं। अभी भी बड़े बड़े रईस जो होते हैं ब्रजवासी उनके घरों में रहती है वो गाड़ियां, केवल वो लड़कियों को लाने या कहीं अपने आराम से जाने के लिए होती है, बस उस पर बैठा करके और उनको ले आए। बड़ी मुश्किल से लाया, जटिला नहीं जाने देगी, किंतु उसे भाषण करके और ले आए। आने के गांव के पहले से ही रोने लग गए सब लोग, जितने लोग थे सुना जिसे लाली आ रही है। विश्वभान महाराज भी लालू को अगवानी करने के लिए एकदम आगे आ गए, और गांव के जितने भी लोग हैं सब की लाली है, महिलाएं भी वो सब लोग उनके लिए आते हैं। इसके बाद में दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हुई, उसको उतार करके घर में ले गए, सबसे मिली जुली। इसके बाद में अपने सहेलियों से भी मिली, सहेलियां भी अपने अपने से पिताजी के घर में आकर के और वहां से स्वतंत्र रूप से। इसके बाद में ऐसा ही रोज झूले पर झूलती हैं, सखियां मिलकर कहीं अपने सखी को झुलाती। कृष्ण का वहां आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई संबंध तो है ही नहीं उनसे, जो उनके घर के जमाई हैं। जमाई करने की बड़ी इच्छा थी, ये कृष्ण हमारे जमाई हो जाए। वो क्या होती है ना, विवाह करने के पहले सगाई भी हो गई थी, सगाई भी होने को गई, सब कुछ हो गया, किंतु योग माया ने सब बिगाड़ दिया, करने भी दिया। सब लोग चाहते, जसोदा जी चाहती हैं, जसोदा जी ने तो राधा जी के हाथ पीले भी कर दिए थे, प्राय हो ही गया था सब कुछ, सोचे जी हमारी बहू होकर के आई, किंतु यह बात नहीं हुई। योग माया ने किसी कारण से, वो विशेष कारण जो कि रुक्मिणी सत्यभामा से भी इनकी अद्भुत प्रेम इनका है, उस पार्थिव भाव को के कारण उन्होंने ये करना नहीं दिया। योग माया ने ऐसा दिखलाया विवाह किसी के साथ में नहीं हुआ, कृष्ण के साथ नहीं हुआ, किंतु सबने सोचा देखा ये दूसरे से हो रहा है, राधा जी की शादी हो रही है जावट में अभिमन्यु, चंद्राल जी की शादी हो रही है गोवर्धन, उस समय में ये लोग सोच रहे हैं कि हमारी शादी हो रही है, किंतु किसी के साथ में योग माया ने शादी नहीं करने दी, लोगों ने देखा भी नहीं, किंतु उन लोगों ने यह समझा कि हमारी इनकी साथ में हमारी शादी हुई है, और योग माया ने इन गोपियों के भी भाव में यह लाज दिया, कृष्ण यद्यपि हमारे प्राण प्रियतम है, किंतु आज हमारी समाज के वजह से हमारी शादी इनके साथ में, और उन लोगों में सजा हमारी शादी इनके साथ, किंतु उन गोपियों के साथ में अपने पतियों का कभी भी जीवन भर कोई भेंट ही नहीं हुई, कभी भी भेंट नहीं हुई, ऐसा समस्त शास्त्रों में प्रमाण है। विशेष करके इन गोपियों की शादी कृष्ण से हुई, इसके भी कुछ कुछ प्रमाण है, नहीं तो मर्यादा रखने वाले लोग जिनको भक्ति नहीं है वो लोग कुछ कहेंगे, इसलिए उनके लिए मौका नहीं दिया। योग माया ने दो बार उनकी शादी कराई कृष्ण से, पहली बात तो हुई जबकि कृष्ण छोटे से अभी थे, नंद बाबा उनको गोदी में लेकर के जा रहे थे, वर्षा हो रही थी, काली मेघ, चारों तरफ में काले काले मेघ थे। सघन कुंजों में गोचारण को देखने के लिए जा रहे थे नंद बाबा। और उसी समय में जब वेग थोड़ा 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 जबकि वर्षा होने लगी, कावान बकार एक तो बंद और उसमें भी घना मेघ और भी काला हो गया, पथ नहीं सूझता था। उस समय में भांडीर बन के निकट गए नंद बाबा और उतने में देखा एक कोई छोटी सी किशोरी आई। अरे दिखाई ये तो बरसाने की हमारे मित्र की लड़की है। और देखते देखते उनके हाथों से ऐसे किया, कृष्ण उनके हाथों में चले गए। नंद बाबा देखते रहे, वो आगे बढ़ी, आगे जाने पर स्वयं किशोरी बन गई, कृष्ण भी किशोर बन गए, उनको उतार दिया। और फिर वही भांडीर वन में बट के नीचे इतने में ब्रह्मा जी आ गए, सब सखियां वहां पर आ गई और आकर के वहीं पर ब्रह्मा जी ने वेद विधि के साथ में उनका विवाह करा, गांधर्व विवाह हुआ, किंतु वेद मंत्रों के साथ में, ये तो राधा जी के साथ। और जिस समय में ब्रह्मा जी बछड़ों को हर करके ले गए और सखाओं को हरण किया, कंधे में ला दिया, उस समय एक बरस तक कृष्ण ही बन गए जितने बछड़े और बन गए सखा। और उस समय में कौन जी गर्गाचार्य ने ऐलान कर दिया, जितनी गोपियां हैं वो सब गोपियों की शादी कर दी जाए, लड़कियों की कन्याओं की सबको शादी, कुमारी कोई ना रहने पाए। इस वर्ष अच्छा योग है, जिस लड़की की शादी हो जाएगी उसका पति अजर अमर रहेगा, वो कभी विधवा नहीं होगी और सब प्रकार का उसका सुहाग बना रहेगा, पति भी उसके दशीभूत रहेंगे और समृद्धि सब प्रकार की लौकिक पारमार्थिक सब समृद्धि रहेगी, इसलिए इस वर्ष सबकी शादी करते हैं। इसलिए गर्गाचार्य के उपदेश से जो गर्भ में लड़के और लड़कियां थी भी उनको भी कर दिया गया, होने के बाद में हम लोग इसकी सगाई आज कर रहे हैं, पीछे शादी। इस तरह से जितने भी लड़कियां कुआरी थी ब्रज में उस वर्ष सबकी शादी हुई। इसलिए वो शादियां किसके साथ में हुई, कृष्ण बने हुए हैं ना, छोटे बड़े गोपाल बने हुए हैं, किशोर भी हैं, उनमें सखा जो जितने थे चार प्रकार के सखा हैं। कुछ सखा जो सुहृद होते हैं कृष्ण से उम्र में बड़े होते हैं एक दो वर्ष, और कुछ सखा होते हैं वो कृष्ण से एकदम छोटे होते हैं, वो दास्य भाव युक्त होते हैं, वो कृष्ण से काफी उम्र में छोटे होते हैं, वो पांच से लेकर के आठ नौ दस ग्यारह वर्ष के हो सकते हैं, कृष्ण को यदि मान लिया बारह वर्ष के या पंद्रह वर्ष के हैं तो। और कुछ सखा होते हैं जो अत्यंत प्रिय हैं, श्री राम इत्यादि उनके समवयस्क होते हैं, और बीच में और भी सखा तरह तरह के होते हैं, तो छोटे से लेकर के बड़े तक उसमें सब प्रकार के सखा हैं। इसलिए जितनी वहां पर ब्रज में गोपियां थी कुंवारी लड़कियां सबकी शादी उस समय में करती गई, इसलिए ये शादियां सब अनायासी कृष्ण के साथ में संपन्न हो गई। किंतु वो लोग समझ रही है ये हुआ है उन सखाओं के साथ में, किंतु हुई कृष्ण के साथ, यही पार्थिव भाव का सूचक है। यदि ऐसा युग माया नहीं कराती तो पार्थिव भाव गोपियों का नहीं, इसीलिए उस समय में उनके साथ भी अभिमन्यु इत्यादि के साथ में भी जो शादी हुई वो एक तरह से कृष्ण ही थे, ऐसा समझ कृष्ण के ही वो प्रकाश है, तभी उन लोगों के साथ में उनकी शादी हुई। इसके बाद में अब ये झूलन का फिर प्रसंग ले आते हैं। अब झूला कुछ दिनों के बाद में एक महीने का झूलन, कृष्ण ने सोचा जी कैसे मिले, इसलिए उन्होंने भी एक सखी का रूप बना करके और उस झूले में बरसाने में झूला लग रहा है या राधा कुंड में स्वच्छंद रूप से झूला लगेगा इस महीने में। वहां पर दो पर्व में बसंत ऋतु सब समय छाई रहती है और वर्षा का भी काल होता है, उसमें वो मिलन होता है, वहां पर उनको झुलाती है। बरसाने में भी यदि झूलेंगे तो इसी प्रकार से देश बदल करके, यहाँ पर देश में ही बदलना है
राधा
कुंड, इसलिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है, वहां पर देश बदल करके जाते हैं, झूला झुलाती हैं सखियां, बस पर सखियां बैठती हैं। अब ये कृष्ण जो देश बना करके आए हैं, सबने कहा ये बड़ी अच्छी सखी है और उसको उनके साथ में बैठा दिया, राधा जी के साथ। झूला जब चलने लगा, आठों सखियां मिलकर के चार चार करके झूला रही हैं, बाजे भी बज रहे हैं, पखाओ, सारंगी, मृदंग, करताल, बीना, झांझ, तरह तरह के सब बाजे, सबका समस्वर से वो बज रहे हैं। अद्भुत श्यामा बद गए, क्षमा बनना होता है ना, क्षमा बद
श्यामा संगीत,
क्षमा क्षमा बनाता है वो जो मृदंग है ना उसको ठीक कर लेंगे, पेशराज के साथ सब बाजा जितने हैं ना एक साथ में एक स्वर से, अच्छा ये स्वर साथ ही जाएंगे, जो कीर्तन करने वाला है संगीत उसके गले से साधा जाएगा, तो पंचम और सप्तम स्वर में ये सब साथ, इसके साथ में तरह तरह से सुंदर संगीत आरंभ हो गया। वो सखी उनके साथ में बैठ गई राधा जी के साथ में, और सखियां झुलाने लगी मल्हार राग, मल्हार राग माने जिसके गाने से वर्षा मेघ एकदम झरने लगता है धीरे धीरे, फुहरे पड़ रहे हैं। अब वो सखी सखियों को जरा इशारे से हटा दिया और वो बैलेंस साध करके बिना हाथ से पकड़े हुए रस्सी, ऐसा बैलेंस होता है जैसे नट होते हैं ना, पतली रेखा पर या तार पर भी चल लेते हैं साध करके, ऐसे उन्होंने साध करके अब छोड़ करके और एकदम जोर से बैलेंस से ऊपर नीचे कर, जितना ही झूला ऊपर और नीचे जाने लग गया वो तो चिल्लाने लग गई, डरने लगी, उनके वस्त्र भी उड़ने लगे, अंचल उड़ने लगा, हाथ से पकड़ने का अब समय रहा नहीं, इन दोनों हाथों से कृष्ण को पकड़ लिया, कपड़े भी उड़ रहे हैं और संभालना मुश्किल हुआ, चिल्ला भी रही हैं। जो कृष्ण का मिलन और आलिंगन कृष्ण के लिए बड़ा भारी दुष्कर कार्य था, सब समय मान करती थी मिलती नहीं, आज अनायास ही कृष्ण को ये झूला का भूतात कर दिया, वहां उनका मान तान सब खत्म हो जाता है, इसलिए ये प्रधान रूप में मिलने और कृष्ण को प्रसन्न करना या कृष्ण उसके माध्यम से राधा जी को प्रसन्न करते हैं, ये झूलन का तात्पर्य है। जब तक हृदय में ऐसी भावनाएं नहीं आएंगी, कैसी मदीय का भाव, तो इसका भी भाव आना चाहिए, पहले साधन करते 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 प्रारंभ स्थिति में ही गुरुकरण करते समय जो श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा भी दो प्रकार की होती है, जिसका पूर्व जन्म का संस्कार है, कुछ साधन भजन किया है, और जो इस जन्म में साधु संग अभी पहली बार मिला, इन दोनों में कोई वैशिष्ट्य होगा कि नहीं होगा, होगा ना, पूर्व जन्म में उसको संस्कार हुआ, भजन करता रहा, हरिनाम करता रहा, हरि कथा सुन रहा है, और काफी उसके अनर्थ भी दूर हो गए हैं, और किसी किसी को तो ऐसा भी हो सकता है उनको निष्ठा हो गया हो, किसी को रुचि हो गई हो, किसी की आसक्ति हो गई है, किसी को भाव अवस्था आने आने को है, किसी को भाव भी हो गया होगा, तरह तरह के अधिकारी लोग अपना जन्म लेकर के भजन करते हैं, पूर्व पूर्व जन्म का, जिसका संस्कार है किंतु छोटी उम्र है, और किसी का इस जन्म में ही केवल अभी आरंभ हुआ है संस्कार किंतु उम्र में बड़ा है, वहां पर क्या विचार होगा? ये सब विचार परमात्मिक में छोटे बड़े उम्र का और ये सब विद्या का, ये सब का नहीं होता, संभव पर नहीं है। भले ही वो उन्नत कोटि का जो जिसका संस्कार है उम्र वाले को सम्मान दे, वो बात तो दूसरी है, किंतु हो सकता है उम्र से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ये पूर्व पूर्व जन्मों के साधन के संस्कार पर सब कुछ निर्भर करता है। किसका संस्कार कैसा होगा, किसका संस्कार कैसा होगा, ये जन्म में जिसको केवल साधु संग मिला है और अनंत भरे पड़े हैं, वो दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के बाद में तब भजन करते करते कुछ कुछ संस्कार आते हैं, और जिसका पूर्व जन्म का संस्कार है वैसा उसको दीक्षा लेने के पहले ही वो संस्कार हो जाता है, और वो ऐसे गुरु के पास ही जाएगा अब जो दीक्षा होगी, जो कि परम रसी तत्व उच्च कोटि का उत्तम भक्त होगा, ऐसे वाले संस्कार वाले। और जिनका संस्कार नहीं है उसको अभी कोई क्षमता विचार करने की नहीं है, वो कहां जाएगा? जैसा उसका संस्कार होगा वो भगवान की कृपा से, यदि ये नहीं हुआ शिष्य यदि नहीं हुआ तो वो जैसे तैसे गुरु के पास में चला जाएगा, भटक जाएगा, और जिसका संस्कार है वो नहीं भटकेगा। अब तो उसका कुछ संस्कार है और वो ऐसे गुरु के पास नहीं जाएगा जो सब कुछ श्रीमद भागवत के रसिक है, गोसाई ग्रंथों के रसिक है, बहुत कुछ आगे बढ़ गए, उनके पास में जाकर के सरल रूप में सहज लेगा, समझ लेगा। और किसी को जो अभी इस जन्म का जिनका संस्कार है उनके समझ में कुछ नहीं आएगा, देखता ही जा रही वो सब छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, छोटे छोटे हैं, ये सब विचार करने लगे, और ये इधर में रुचि है भागवत के ये श्लोकों को ऐसे से दशम स्कंध के और ये सब पढ़ते सुनते हैं और इसमें रुचि है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको बैन लगाना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा संस्कार नहीं है। किंतु लोगों का जिनका संस्कार है वो क्या करेंगे, उनका दीक्षा के पहले से ही उनका ऐसा है, इधर में उनकी रुचि है, इधर में भजन की वासना है, इसलिए वो ऐसे गुरु के पास में जाकर के कुछ अधिक उन्नत धर्म की कथा सुन करके और उधर ही चले। इसलिए उस समय में उनके संस्कार प्रशस्त और उनका जिनका भी संस्कार नहीं है ये श्रद्धा दो प्रकार की हो गई। और पहला वाला जिसका संस्कार है वो कैसे जाएंगे, तो राजा निगा की तरफ में उनकी श्रद्धा होगी, उसमें तो मालूम साधारण लोगों को नहीं होगी, किंतु जो इस विषय का जो गुरु होगा वह है रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी वो प्रारंभ से कैसे हैं, और लोग जो हैं उनका कैसा संस्कार है, ब्रह्मा जी को ही देख लो हरिदास ठाकुर के रूप में या प्रहलाद महाराज जी को, अनर्थ नहीं है, सब कुछ ठीक है, किंतु इस विषय का संस्कार नहीं, संस्कार हो भी सकता है किंतु ऐसा कहीं देखने में चैतन्य चैतन्य इत्यादि में नहीं है, किंतु रूप गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का और जो भक्त लोग हैं महाप्रभु जितने भी वैसे परिकर हैं सबका शादी, आदर्श गोपाल नित्यानंद प्रभु जी के जो सखा लोग हैं उनका सख्त भाव में उनका देखा जाता है। इस तरह से भजन करते समय में ऐसे जिनके दो प्रकार के श्रद्धाएं हैं, दो प्रकार की, एक तो चली रघुनाथ की तरफ में और एक चली वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति वाला विचार करते चलेगा ये क्या ठीक है नहीं ठीक, उनको कुछ विचार नहीं करना है, वो आंख बंद करके सीधे चलते हैं, कोई कुछ जो कुछ का है,
और इनका शास्त्र सम्मत मर्यादा संपन्न क्या चीज अच्छी है नहीं है, क्या करना चाहिए नहीं करना, ये विचार करके वैदिक भक्ति की तरफ सब होते हैं। इसी प्रकार से उनकी निष्ठा और उनकी निष्ठा दोनों की भी, किंतु निष्ठा भी एक तरह की नहीं होगी। निष्ठा से जो रुचि होगी उनकी रुचि और उनकी रुचि एक नहीं होगी, अलग अलग चलेगी। और इसके बाद में रुचि के बाद में आसक्ति भी दूसरे तरह की होगी। आसक्ति के समय में ही तो आराध्य का भाव ठीक हो जाता है। भक्ति माने भजनीय और भजन, आसक्ति दो प्रकार की है। पहले होगी भजन में और इसके बाद में होगा भजनीय में। भजनीय माने क्या? भजनीय माने दो, कृष्ण और उनके परिकर, ये दोनों हमारे लिए भजनीय है, जिनके भाव से हमें लोभ है वो उनके परिकर और कृष्ण, ये दोनों भजनीय है। वहीं पर ठीक हो जाएगा आसक्ति के समय में, जब अनर्थ करीब करीब थोड़ा सा दूर हो जाएगा, उस समय में हमारे शुद्ध मन की भावनाएं आत्मा से प्रतिफलित उस पर होती है, उस समय में ये ठीक होता है। उस समय में भजन आरंभ ठीक से हो जाता है और साथ साथ में भजनी भी ठीक हो जाता है। अब दोनों का संबंध होकर के भाव हुआ, ऊपर से परिकरों का भाव उसके अंदर, यह भाव उनका भी होगा वैदिक भक्ति वालों का, उनका वैकुंठीय भक्ति आएगा विधि मर्यादा वाला। और उसमें अधिकांश रूप में दो भाव आएंगे, शांत वाला और अधिक से अधिक दास वाला, यही दोनों आएगा। यदि कुछ और भी आएगा तो इसी से प्रधान होकर के आएगा, दास प्रधान या शांत प्रधान रहेगा। इस तरह से कि इनका जो प्रेम होगा अलग होगा, इनका प्रेम वो वृंदावन की रास्ता यही प्रारंभ से ही पकड़ करके चलता है और ये बैकुंठ की तरफ में अग्रसर होता है। बैकुंठ वाले लोगों के लिए ये सब वृंदावन के भाव बहुत सुदूर है, केवल ब्रज में वो भी शांत में, दास में तो है ही नहीं है, ये झूला इत्यादि बासल्य में कुछ कुछ है, पल्ल में झुला रहे हैं, अपने अंगूठे को पैर से पी रहे हैं, कौन भैया झुला रहे हैं। उस समय में कौन आ जाएगा? पशु, गाड़ी वाला हो, सप्तासुर और द्रोमासुर, तीनावर्ती ये सब आ जाएंगे। और सखा लोग जब खेत में जाते हैं वनों में, तो वह रस्सियां ले जाते हैं डालों पर उसको झुला करके, और कृष्ण को झुलाते हैं, अपने भी झुलाते हैं। गोपियों का किंतु झूला ये सावन महीना का प्रसिद्ध उन्हीं के लिए। आज यही झूला है, थोड़ा बहुत हमने इसका एक हिंट दिया। आप लोग जो जिस अधिकार में रह करके भगवान का भजन करेंगे, और कोई कामना वासना हृदय में नहीं आने, समस्त अनर्थों को दूर करके जहां तक हो सके हरि नाम आश्रय करेंगे, नाम के प्रभाव से ही हम लोग क्रमशः आगे बढ़ जाएंगे। किंतु इस अवस्था में हम लोगों का श्रवण अधिक होना चाहिए। यदि श्रवण ठीक नहीं हुआ तो कीर्तन भी ठीक नहीं हुआ, भावना भी ठीक नहीं। इसलिए आदव है स्मरण तब कीर्तनम तब स्मरण। श्रीमद् भागवत में पहले ही पहले स्कंद में पहले ही एकदम बतलाया, सरल पुंसान पर धर्म जतो भक्ति रोखे अहित में सबई पुंसान धर्म लोकपादी हरिकता में रुचि नहीं थी। और जो तखना दूसरे में धर्मापूर्ति कई तो वस्त्र परम निमर्शनान स्वतान दिव्यम वास्तव अत्र त्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवते नामनीति परेश्वर सत्यो दिव्य वरुप्यते एक रसायन पर अधिक कभी जोड़ दो, जिनका श्रवण अधिक होगा उसका हरिनाम कीर्तन भी शुद्ध होगा, उसका स्मरण भी शुद्ध होगा, उसका सभी कुछ ठीक होगा। जिनको श्रवण में रुचि नहीं है, नाम यानी कुछ देखा जाता है तो उनके बाद में नाम सभी घट जाएगा। इसलिए श्रवण अच्छी तरह से करो, भगवान का भजन करो, दूसरी कोई भी बात ना है। वंशा कल्पना बहुत देर हो गई है, 12:30 बज गया है। हमने 10 बजे से 12 बजे के लिए कहा, किंतु 10 बजे तक कोई आए नहीं। करीब करीब 11:30 बजे आरंभ हुआ, तभी 1 घंटा हुआ है। शाम को हम लोग फिर बैठेंगे, आप सबसे अनुरोध है शाम को आप लोग 5 बजे जरूर आ जाएंगे, और 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा सब लोग बोलेंगे। जो उन लोगों ने बोला है वो लोग भी समय के अभाव से ठीक नहीं बोल पाए, बहुत संक्षेप में बोला। अभी थोड़े से 2-4 बातें, 2-1 बातें में, ऋतभूषणी कौन थे, उनका परिचय क्या है। आजकल के लोग जितने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, इस पर रिसर्च करते हैं, रूप गोस्वामी कौन, उनका जन्म कहां पर हुआ, उनके माता पिता कौन थे, कहां पर उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने क्या किया, साधारण रूप में इस पर विचार करते हैं। क्योंकि किसी भी वैष्णव ने अपने जीवन में, अपने साहित्यिक कार्यों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरे पिता माता का नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, वर्ण क्या है, समाज क्या है, किसी भी नहीं। न तो वाल्मीकि जी ने लिखा, न व्यास जी ने लिखा, न हमारे ये रूप गोस्वामी ने भी कहीं नहीं लिखा, सनातन गोस्वामी भी नहीं कहीं लिखा, किसी ने भी नहीं लिखा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी नहीं लिखा, हमारे गुरु जी ने भी या वैष्णव अभी भी देखते हैं, किसी ने भी अपना ये लौकिक परिचय नहीं दिया। इसका कारण क्या है, हमने संक्षेप में मथुरा में बतलाया था, अभी मैं थोड़ा सा बतला करके शाम के लिए रखता हूँ। शाम को रूप गोस्वामी के संबंध में, उनकी विशेषताओं के संबंध में हम लोग करते हैं, अभी केवल किसी पॉइंट तक थोड़ा सा मैं विचार करता हूँ। किसी का जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, मृत्यु कब हुई, ये सठीक कैसे कहा जाए। रूप गोस्वामी का जन्म कहां हुआ, मान लिया कि उनका उम्र उतनी गई हो, कहते हैं उनका जन्म कहां हुआ, कौन का जन्म हुआ इस जगत में, इस जगत की मिट्टी में, पृथ्वी में, पंचभौतिक किसी भी प्रदेश में उनका जन्म नहीं है, इसलिए रूप गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं हमारा कहां जन्म हुआ, या कोई भी कैसे लिखते हैं कि हमारा जन्म कहां हुआ। तो जैसे उनके माता पिता कौन थे, आजकल यही सर्च होता है, आजकल यही सर्च होता है, भूत राजा का योता ये है, योता होता है उसको समझ में सच चलता है, अरे ये योता 5,000 वर्ष का है और ये योता कैसे बना और उसको कौन कौन पानी किया, ये आजकल रिसर्च का विषय होता है, जिसमें कुछ भी सिर और पैर नहीं होते, आजकल रिसर्च का विषय यही होता है। तो हमारे ये सब आचार्य लोग ऐसे मूर्ख नहीं थे वे इस पर बातचीत चर्चा करें। वे कहां के रहने वाले कहां आए हैं, उनका जब जन्म ही नहीं है तो वो जन्म के लिए क्या बतलाएं कि हमारा कहां जन्म हुआ। अंडरस्टैंड साफ सब। दूसरी बात, उनके माता पिता अच्छे रूप गोस्वामी के माता पिता कौन है, जैसे नहीं रूप गोस्वामी के तो पिताजी थे, इतने भाई थे, तो ये नकली है। रूप गोस्वामी इसको नहीं मानते, ये सब नकली है, ये तो अदल बदल जाता है। हमारे लाभ को जन्म हुए अभिमन्यु को, अभिमन्यु जब मारा गया तो ये चला गया चंद्रलोक, उसकी आत्मा चली गई। अर्जुन बड़े रो रहे थे, सुभद्रा जी रो रही है, सभी लोग रो रहे। कृष्ण उनको लेकर के अर्जुन को चंद्रलोक में गए, देखा कि देखो वो कौन बैठा है, जबकि मुन्नी बैठा है, 15 वर्ष का कुछ और लड़का बैठा था। अर्जुन बेटा बेटा अभिमन्यु कह करके दौड़ा उसको गले लगाने के, अभिमन्यु कहिए खड़े रहिए खड़े हो जाए, हम बेटा कौन पिता, अरे तुम मेरा बेटा है तो मैं कहता हूं कि तू मेरा बेटा है तो ये कैसे, अरे मैं तुम्हारी कितने बार बाप हुआ, कौन कौन जोनियों में मैं तुम्हारा बाप हुआ, अब तुम एक जोनी में तुम हमारा बाप हो गया तो तू कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, वो भी 15 वर्ष के लिए, मैं तो 15 वर्ष के लिए अभी सब खो करके गया था इस स्थिति को, इसलिए आप मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता ये तुम्हारे जो सामने में जा रहे हैं सामने, ये मेरे पिता हैं, पिता के पिता के पिता, और हमारा कोई पिता नहीं। अर्जुन का मुंह भंग हो गया, मुझे बेटा मिल गया, चल ये वैष्णव में वैष्णव की जो जाति देखता है सब बिछे पाषण भी भरे जीवन क्या है,
वैष्णव जाति नारकी
वो नारकी होता है, वैष्णव में जाति पापी पिता पुत्र ये सब देखना उचित नहीं, इसलिए रूप गोस्वामी के पिता कौन थे। तो ये यदि हम लोग लें तो एक तो उनका कोई पिता ही नहीं, दूसरा मान ही नहीं, तो ब्रज के उनके पिताजी जो थे वो पिताजी उनको मान सकते, जिनका मुख्य काल ही उनके प्रति ये भाव है जो हमारे हमारी लड़की है, ये तो हो सकता। इसलिए उन्होंने कहीं भी अपना इस पिता का या माता का उल्लेख नहीं किया, और पृथ्वी पर अपने जन्म का भी कोई परिचय नहीं दिया, है ही नहीं तो देंगे कहां से। यदि वो देते हैं कि हमारा जन्म बंगाल के किसी क्षेत्र में हुआ है, नई घाटी इत्यादि या कहीं नई घाटी में उनका जन्म हुआ था तो यह गलत है, नई घाटी में उनका जन्म हुआ इस पृथ्वी में, पहले तो बैकुंठ, बैकुंठ से ऊपर गोलोक वृंदावन, वृंदावन पृथ्वी पर है ही नहीं है, पृथ्वी से बहुत क्या है वो अलग है, इसलिए उनका यह जन्म उनका माता पिता ये सब जो विचार है ये गलत है, इसलिए उन लोगों ने ये दिया ही नहीं। तो वैष्णव का जो वैष्णव लोग परमार्थिक हैं वो अपना क्या परिचय दे इस जगत का, जो मैं कौन हूं, अधिक से अधिक हमारे गुरु जी ने वर्णन किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए, ये एक ऐसे महापुरुष हैं जो इस जगत में आकर के अपने को जो कहा कि मैं त्रिगंधी स्वामी किस्मत भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनका यह परिचय कैसा है, बहुत ऊंचा व्यक्ति अपने को सबसे नीचा अपने को मान करके यदि कहता है कोई राष्ट्रपति या राजा जो मैं झाड़ूदार हूं, ऐसा ये परिचय है, कहां रूप में ये नयन मंजरी और कहां कल्चर दे रहे हैं त्रिबंधु स्वामी। शाह जी आलोक कहते कि अरे अपने को ये त्रिबंधु स्वामी कहते हैं, परमहंस कहते हैं, ये बड़े तो निबंड है, किंतु वो नहीं समझते कि कहां से आकर के और ये सब परिचय दे, जगत का परिचय दे। इसी तरह से रूप गोस्वामी जगत के कोई व्यक्ति नहीं है, वो वृंदावन के लघट कुंज के रात वृंदावन के वो मंजरी स्वरूप है। उन्होंने अपना यह परिचय गुप्त रखा। रघुनाथ दास गोस्वामी और दूसरे गोस्वामियों ने उनका यह परिचय जगत में। इनका सबसे प्रधान एक चीज है, यम शाम को हम लोग बतलाएंगे कि प्रत्येक चीज की भक्ति राज्य में, परमात्म राज्य में, उन्होंने प्रत्येक चीज की अपनी एक परिभाषा दी। इसके पहले आज तक नहीं हुआ था परिभाषा। जैसे पुत्र की परिभाषा क्या है, आत्मा वही जायते पुत्र, अपनी आत्मा से अपने से जो पैदा होता है उसको कहते हैं पुत्र। ये परिभाषा हुई। यदि किसी महिला के गर्भ से पति का पुत्र न होकर के दूसरे से पुत्र उत्पन्न हो तो उसको पुत्र कहेंगे कि नहीं, वो पुत्र नहीं होगा, वो जारज या दूसरा कहलाएगा। ठीक उसी तरह से प्रत्येक चीज की अपनी परिभाषा होती है। ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ये परिभाषा हुआ। इसी तरह से ज्योमेट्री में सब चीज की परिभाषाएं होती है, व्याकरण में भी परिभाषा होती है। बिना परिभाषा की कोई चीज नहीं हो सकती। अभी शिवानंद ब्रह्मचारी ने बताया ना, जितने आचार्य लोग आए रहे वो जीवों की परिभाषा स्थिर करने में ही वेदांत और सब कुछ लगा दिया। शंकराचार्य का प्रधान यही कहना था, जीव ही ब्रह्म। और हमारे जितने आचार्य थे उन लोगों ने क्या कहा, जीव ब्रह्मा नहीं है, वह ब्रह्म का अंश है अथवा उसकी शक्ति से परिणत हुआ है, उसकी शक्ति से बना हुआ परिणाम है, तथा शक्ति से उत्पन्न है, वो कभी भी परब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म हो सकता है, ब्रह्म हो जाएगा, जितनी लिविंग एंटिटी है वो ब्रह्म हो सकती है क्योंकि वो चेतन है, किंतु परब्रह्म नहीं हो सकती है। यही कृष्ण में और जीव में अंतर है। तो ये सब परिभाषा में ही रह गए सब लोग, जितने भी आचार्य आए। रूप गोस्वामी जी ये पहले आचार्य हैं जिन्होंने महाप्रभु के आदेश से भक्ति की परिभाषा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात्मज्ञानाप्रितम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, ऐसी परिभाषा दी जो आज तक वेदों में, उपनिषदों में, इसके बाद में व्यास जी ने, इसके बाद के आचार्यों ने भक्ति की परिभाषाएं दी हैं, किंतु इतनी सर्वांग सुंदर परिभाषा दी। जस देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु तथा दसैते कत्ता ही अर्थात प्रकाशन के मात्र में, ये उपनिषदों में आया, किंतु भक्ति की परिभाषा उपनिषदों में कहीं नहीं देखी जाती है। ऐसी हमारे नारद जी ने अपने नारद सूत्र में, सांडिल्य ऋषि ने सांडिल्य सूत्र में उन्होंने भक्ति की कुछ परिभाषाएं दी, जैसे सापरानुरक्ति ईश्वर, यहां पर ईश्वर कौन और अनुरक्ति क्या, ये सब का वर्णन। ये मन की क्रिया है ना आत्मा की क्रिया है ना शरीर की क्रिया है, ये कुछ कहीं बतलाया, किंतु रूप गोस्वामी से खोल करके बतलाया। श्रीमद् भागवत में यह बतलाया गया, लक्षणं हि भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम् अहेतुक अभावेता जा भक्ति, ये बतलाया।
किंतु कुछ कुछ ऐसा मालूम होता है सर्वांग पूर्ण होने पर भी सर्वश्रेष्ठ रूप में ये प्रतिपादित नहीं हुआ। जैसे कि रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी के अनुसार ये बतलाया, अन्नाधिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म जनातम अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रूपम। ये भक्ति की ऐसी परिभाषा स्थापित थी जो आज तक किसी भी पूर्वाचार्य ने ऐसी भाषा परिभाषा व्यक्त नहीं की। और ऐसा मालूम पड़ता है कि आने वाले भविष्य में भी इससे ऊपर उठ करके कोई जो व्याख्या हो सकेगी परिभाषा भक्ति की, ये भी असंभव है। इसलिए तो क्यों रूप गोस्वामी पहले भी महाप्रभु जी के साथ में आए थे। कब आए थे? ब्रह्मा जी के एक दिन पहले आए थे। तो ये भक्ति तो नित्य है, परिकर भी नित्य है, इनकी परिभाषा ही भक्ति की नित्य है, किंतु उनका क्रम विकास होता है। आज तक जो कितनी भी लोगों की भक्ति की परिभाषा, उसका क्रम विकास होते होते आज रूप गोस्वामी के मुख से सर्वश्रेष्ठ परिभाषा जो निकली, अब उसका ऊपर का मान और ऊपर नहीं पड़ने बस वही तक। और इसमें अंत तक भक्ति के जितने भी प्रेम के जितने भी सोपान ऊपर तक है, सब भाव महाभाव सब इसी के अंतर्गत में, इस परिभाषा के अंतर्गत में आ गए। साधन किसको कहते हैं? यदि आज रूप गोस्वामी नहीं रहते, जितने सहजिया है ना वो कहते कि हमारी भी भक्ति है, जितने कर्मी लोग हैं कहते कि पितृभक्ति ही भक्ति है, कोई कहता कुछ। किंतु रूप गोस्वामी ने सबकी परिभाषाएं बांध दी। साधन किसको कहते हैं? कृति सद्भा जब भवे सद्भावा स्वसाधन विदा नित्य सिद्धस्य प्राकट्यम् इति। ये बताए। अच्छा भाव किसको कहते हैं? भाव की परिभाषा उन्होंने दी। ये सब यदि बांध नहीं देते ना तो हम लोग कहां के कहां भटक जाते। इसलिए सब लोग इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, ये सब इनकी बातों को आदर करते हैं और इनकी बातों को प्रमाणित माना जाता है। रूपोषण भाव के लिए क्या लिखा? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुजन सुषम विभाग रुचि चित्तम मासून्य सौ भाव। नहीं तो भाव को क्या लोग समझते? मन की एक विकार, मन अपने मन के अनुसार अनुकूल वस्तुओं को पा करके विशेष करके संसार के विषयों में वो रमता है। और रमने की कितनी भी चीजें हैं उनमें स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में जो भाव है उसी को भाव लोग समझ जाते हैं, मन की क्रिया को। किंतु उन्होंने कहा व्यतीत भावना वर्तमान जब चमत्कार भार हुई कृति सप्तले बाढ़ स्वगते सरो। भाव मन की क्रिया नहीं है, यह एक नित्य सिद्ध भाव है। वो साधन जिन साधनों के द्वारा उसका ऊपर का चीज अच्छा गन हट जाता है और जो वस्तु है वही प्रकाशित होती है। साधन के द्वारा कोई नई चीज हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। साधन से भाव भक्ति यदि मिलती है तो इसका मतलब है कि भाव भक्ति अनित्य है। इस चीज को समझो, साधन के द्वारा जो चीज होगी वो पहले चीज नहीं थी, साधन के द्वारा हुआ। इसलिए साधन के भक्ति के द्वारा यदि भाव भक्ति यदि मिली तो ये हो गया क्या? भाव साधन के द्वारा प्रकटित, इसलिए अनित्य उसके पहले था नहीं। किंतु ऐसे नहीं, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम्। भाव माने वो नित्य सिद्ध है, सब समय है, उसको हृदय में प्रकट करने का नाम प्रेम के लिए। कैसा कहा? एक परिभाषा बांधी प्रेम के लिए, नहीं तो सभी का जगाई मधाई सभी लोगों का प्रेम प्रेम हो जाता। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम अतिशयांकित मैंने भाव पहली अवस्था है जिस प्रेम रूपी सूर्य का। वो प्रेम रूपी सूर्य जो है वो प्रेम है, भाव उसकी पहली अवस्था है, आभास है। जब कृष्ण में अनन्य ममता होगी, ऐसी ममता कैसी? अनन्य ममता, अनन्य ममता ओ किसी दूसरी जगह का ही है। भक्त समझ का ना, कृष्ण में अनन्य ममता होगी। प्रेम का पहला ये लक्षण है, ममता है नहीं, अप्रेम हो जाएगा। ये होगा पहले ममता, इसलिए पहले संबंध, इसके बाद में ममता। बिना ममता के प्रेम कभी संभव पर नहीं हो सकता है, इसलिए उसको बांध दिया। प्रेम आत्मा की वस्तु है, मन की नहीं, शरीर की नहीं। और उस आत्मा का परम पिता जो परमात्मा है, कृष्ण है, वो सबसे अधिक रस स्वरूप वस्तु है। उनके प्रति आत्यंतिक ममता यदि लगे और उसे चित्त एकदम द्रवित होने लगे, चित्त द्रवित नहीं होने से नहीं होगा, ममता होगी चित्त भी द्रवित होगा। और चित्त को वो कृष्ण विभावित भावनाएं चित्त को द्रवित करने अतिशयान की तरह अत्यंत अधिक रूप में, तब इसको कहते हैं प्रेम। इसके बाद में देखो प्रेम की परिभाषा दी, स्नेह की परिभाषा दी, मान की परिभाषा दी। इतर से स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव कहां तक लेकर के एक एक परिभाषा देते चले गए, जो आज तक कहीं कहीं देखा जाता। ऐसे रूप गोस्वामी है। आज समय बहुत अधिक हो गया, प्राय एक हो गया, वैष्णवों को बहुत कष्ट देना हुआ। वैष्णवों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना करता हूं कि मेरी धृष्टता को लोग क्षमा करेंगे। और शाम को आप लोग 5 बजे आएंगे, इसको कम या एफआई हम लोग फिर इसको आरंभ करेंगे। अन्न के विशेष विशेष विषयों पर हम प्रत्यालोचना करके और हम लोग बतलाने की या समझने की चेष्टा। साथ साथ में आप सभी लोग आएंगे 4 बजे, 4 बजे से हम लोग झूला का कीर्तन आरंभ करेंगे।
कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः आददानस्तेनं दन्तैरिदं याचे पुनः पुनः श्रीमदरूपदं भोजधूलि स्यात् जन्मनि जन्म श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय परिकर श्रीमती राधिका जी के एक अनिष्ट सेविका रूप गोस्वामी जी की पूर्व भाव तिथि है। आज इसके उपलक्ष्य में हम सभी लोग सेवा कुंज के अंतर्गत राधा दामोदर जी के मंदिर में जहां रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी थी, यारा करके वो भजन किया करते थे और भजन करते करते जहां पर उन्होंने अंतिम समाधि ली वहां पर हम लोग गए और उनकी रूप गोस्वामी के चरणों में अपनी भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित हम लोगों ने की। उसके बाद में हम लोग यहां पर आकर उनके संबंध में विभिन्न वक्ताओं ने उनके उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित। विशेषता रूप गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को कैसे स्थापित किया जगत में, कुछ कुछ हम लोगों ने इसके संबंध में बोला है। अभी
जो वक्ता रह गए हैं ये लोग कुछ कुछ बोलेंगे और अंत में अवकाश मिलेगा तो मैं भी बोलूंगा। और अभी 5 दिन हम लोग यहाँ रहेंगे ना, पूर्णिमा तक रहेंगे, यही सब कथाएं यहाँ पर आलोचित होंगी। अभी नाम
ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे
गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हम लोग सवेरे से अभी तक चिलरूप गोस्वामी के की महिमा में, उनके अपराकृत जीवन और उनकी शिक्षाओं के संबंध में हम लोग कुछ बोल रहे हैं। रात का भी समय हुआ है, मैं केवल एक विषय उनके संबंध में कुछ अपने उनके ऊपर में अपना भाव प्रकाश करके मैं वक्तव्य समाप्त करूंगा। इसके बाद में आरती होगी और फिर कल हम लोग इसके संबंध में बैठ करके अनुशीलन करें। एक बात, आजकल गौड़ीय वैष्णव में आजकल विशेष करके अमेरिका इत्यादि विदेशों में एक विषय बना है कि प्रलंब भाव ही सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि लीला के दो छोर हैं, एक छोर है विप्रलंब और दूसरा संभोग, संभोग माने लीला, किंतु विप्रलंब ही श्रेष्ठ है, कुछ लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है। कहीं कहीं पर विप्रलंब की बहुत महिमा बतलाई गई है, बात ठीक है, किंतु सचमुच में क्या बात है, रूप गोस्वामी जी की इस विषय में क्या दृष्टि है, ग्रंथों में कैसे उन्होंने इस विषय को प्रकाश किया है, हमारे आचार्यों ने विशेष करके सप्तम गोस्वामी के बाद में अष्टम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी इस विषय को किस दृष्टि से ग्रहण कर रहे हैं, इसी विषय में मैं दो एक बात बतलाऊ। भक्ति गोस्वामी सिंधु और उज्ज्वल नील मणि में भक्ति के प्रसंग में हमने सवेरे बतलाया था, रूप गोस्वामी ने कृष्ण कौन है, भक्ति किसको कहते हैं, साधन किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, राग किसको कहते हैं और राग किसको कहते हैं, फिर रागांगा और रागात्मिका किसको कहते हैं, और भक्ति के श्रद्धा से लेकर अंतिम स्थिति भाव महाभाव इत्यादि तक के सबकी परिभाषाएं बतलाई है, उसका लक्षण बतलाया। जैसे एक साधारण चीज को ही ले ले हम, जब भाव भक्ति का वो विचार कर रहे हैं तो भाव किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा किसको कहते हैं और उसके लक्षण क्या है और उस भाव की प्राप्ति कैसे हो सकती है, सबका यथाजथ वर्णन किया, जिससे साधक इन चीजों को पहले समझे, समझ करके फिर उसमें प्रवेश कैसे करे, उसकी उपलब्धि कैसे करे और दूसरों को भी वह समझ सके कि इसमें यथार्थतः भाव है या केवल सहजियागिरी है या केवल दिखलाने के लिए। जब तक इन विषयों का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आदमी मिसगाइड हो जाता है, कुभाव को ही भाव, कुरस को ही रस, कुसिद्धांत को ही सुसिद्धांत समझने के लिए बाध्य रहता है, उसके समझ में ही कुछ नहीं आता। जिसको भाव नहीं है उसी को भाव समझ लेता है। इसलिए पहले हम इसको बतला रहे हैं, जैसे भाव भाव के लिए उन्होंने बतलाया शुद्ध सत्व विशेष आत्मा
प्रेम
सूर्यां साम्य भाग रुचि भी चित्तम मा शून्य कृत सौ भाव उच्यते। ये परिभाषा दी। भाव किसको कहा जाए? आंख से आंसू आने लगा, कुछ एक सुन करके अवश्य झट ऐसे ऐसे शरीर में कुछ विकार दिखलाया, गिर गए, मुख से लार टपकने लगे, ये भाव नहीं हो सकता। हो सकता है कि या रसाभास हो या रसदुष्ट हो, मुक्ति के लिए भी ऐसे हो सकते हैं। इसलिए चित्त द्रवित नहीं हो और तब ये सब चीजें हो तो समझना चाहिए भाव नहीं। इसलिए भाव को समझाने के लिए उन्होंने कहा शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। विशेष आत्मा शुद्ध सत्व किसको कहते हैं? कृष्ण के नित्य लीला परिकरों में कृष्ण के प्रति जो सेवा की और प्रेम की भावना है वो उनमें नित्य स्थित है, नित्य परिकरों में। जैसे जसोदा श्री नंद बाबा में वात्सल्य रस वात्सल्य का भाव नित्य स्थित, सुबल सिदाम इत्यादि सखाओं में सख रस का यह भाव उनमें नित्य सिद्ध है। गोपियों में विभिन्न गोपियों में विभिन्न प्रकार के माधुर्य रस ये नित्य उनमें अवस्थित है। किसी साधक को उसको पाने का लोभ हो गया कहीं से सुनकर अथवा भगवान की विशेष कृपा से या उनके अनुगत जनों के भक्तों की विशेष अहित की कृपा से यदि हो गया तो उनके चरणों का अनुगमन किनके? उन परिकरों का, सुबल सिदान नंद जसोदा और गोपियों के अनुगत्य में उनके भावों को अनुशीलन करने लगे। कैसे अनुशीलन करने लगे? रूप गोस्वामी ही पहले पाल आचार्य हैं जो अष्टकादी लीला का सूत्र बनाया, आठ, पहले एक और एक से फिर आठ इसका सूत्र जो ये और वाचीन है ऐसा नहीं, बल्कि कौन पद्म पुराण इत्यादि में शिव पार्वती संवाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको उद्धृत किया है जैव धर्म में और शिक्षाष्टक चैतन्य शिक्षामृत में उसको उद्धृत किया है। ये नवीन चीज नहीं है, है नित्य, किंतु उन्होंने उसी बात को नए बोतल में नई भाषा में नई भावों में जगत में उन्होंने परिवेशन किया। इसलिए अष्टकालीय लीला चिंतन का एक श्लोक बतलाया, उसमें आठों याम की बातें बतलाई और फिर आठ श्लोकों में एक एक याम की बातें बतलाई और कैसे उसका अवसर्जन किया जाए इसको कवि कर्णपुर ने, श्री राजीव गोस्वामी ने इसमें नहीं जीव गोस्वामी ने मोटीगर गोपाल चंपू में कृष्ण ने कवि कर्णपुर ने आनंद वृंदावन चंपू में और इसके बाद में फिर नहीं, इसके बाद में फिर उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने
गोविंद लीला
गोविंद लीलात्मक में, और इसके बाद में चक्रवर्ती ठाकुर ने जो बाकी रह गया लेकर के भर करके उसको पूरा कर दिया। किंतु मूल उत्साह है किसका? तो साधक जिसको रुचि होगी उनमें से, जिनके प्रति रुचि है उनके भावों को, उनकी क्रियाओं को, उनके व्यवहारों को अपने जीवन में अनुशीलन करेगा उसी आठ काल के माध्यम से। किंतु किसको? जिसको भाव उत्पन्न है उसको, इसके पहले नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने जैन धर्म में इसको अच्छी तरह से दिखलाया, इसका कौन अधिकारी है, नहीं तो सहजियागिरी हो जाएगी। इसलिए रूप गोस्वामी ने कैसे उसको पाया जाएगा भाव, इसके लिए ये पद्धति निकाली। तो ये पद्धति को गुरु पदाश्रय होकर के वैसे गुरु से जो प्राप्त करके वैसा करेंगे, तो वो जो नित्य सिद्ध भाव है वो हृदय में, वो क्या है? शुद्ध सत्व है।